नमस्कार भारत, बुधवार 27 जुलाई, मैं हूं निखिल रंजन। अमेरिका में हिलरी क्लिंटन को मिली डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। 240 सालों के अमेरिकी लोकतंत्र में ये कारनामा करने वाली पहली महिला बनी।
All votes cast by delegates be reflected in the official record, and I move that Hillary Clinton be selected as the nominee.
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मस्जिद में जलाई गई कुरान, इलाके में तनाव, डरे हुए हैं हिंदू परिवार। गुजरात में दलितों के विरोध प्रदर्शन पर मुस्लिमों की भी है नजर। राज्य में मांस खाना क्यों बन गया है अपराध। महानदी को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ठनी।
वो पूरी तरह से उड़ीसा का सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। हिलरी क्लिंटन अमेरिका में किसी प्रमुख राजनीतिक दल की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं। फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी प्रतिनिधियों ने हिलरी क्लिंटन को राष्ट्रपति पद के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार नामित कर दिया है। हिलरी क्लिंटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हैं। अमेरिका में इस वर्ष नवंबर में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, जहां हिलरी का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा। फ्रांस में एक चर्च में पादरी की हत्या और हत्या करने वाले व्यक्ति का कथित इस्लामिक स्टेट से संबंध होने की खबरों के बाद राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि यूरोप ने इससे पहले कभी इस तरह के खतरे का सामना नहीं किया। हमलावर ने चर्च में कुछ लोगों को बंधक भी बनाया था। इस घटना का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ओलांद ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा,
Notre pays fait la guerre. Une guerre à l'extérieur.
हमारा देश एक तरह से युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है। सीरिया और इराक में हम बाहर से युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि अंदरूनी मोर्चे पर हम चरमपंथ और जिहादियों से जूझ रहे हैं। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और हम इसे जीतेंगे। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के मुनाफे में 27% की गिरावट आई है। कंपनी ने बताया है कि इस वर्ष की दूसरी तिमाही में आईफोन की बिक्री कम हुई है, हालांकि ये गिरावट अनुमान से कम है। एप्पल को अपनी कमाई का 2/3 हिस्सा आईफोन की बिक्री से मिलता है। आईफोन की बिक्री में गिरावट से निवेशक चिंता में हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सितंबर में आईफोन 7 जारी होने पर कंपनी अपने नुकसान की भरपाई कर सकेगी। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने जर्मनी की कार बनाने वाली कंपनी फॉक्सवैगन के उत्सर्जन संबंधी घोटाले को $15 अरब में कानूनी तरीके से निपटाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके लिए कंपनी को फॉक्सवैगन के मालिकों को मुआवजा देना होगा और लगभग 10 लाख डीजल वाहनों को वापस भी लेना होगा। इस बारे में अंतिम फैसला इसी वर्ष अक्टूबर में आने की उम्मीद है। फॉक्सवैगन कंपनी ने पिछले साल स्वीकार किया था कि उसने उत्सर्जन संबंधी नतीजे गलत दिखाने के लिए एक खास तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। रूस की 800 मीटर की धावक यूलिया स्टेपानोवा ने बीबीसी को बताया है कि रूसी खिलाड़ियों के पास प्रतिबंधित दवाएं लेने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। रूसी खेल जगत में चरणबद्ध डोपिंग और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली यूलिया पहले हुए ड्रग टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं, निखिल रंजन। आज आधी रात को जब पूरा भारत गहरी नींद सो रहा था, तब अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक इतिहास रचा जा रहा था। करीब 240 साल के अमेरिकी लोकतंत्र में ये पहली बार हुआ है कि एक महिला को राष्ट्रपति पद के लिए किसी प्रमुख दल की उम्मीदवारी हासिल हुई। हिलरी क्लिंटन ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। हिलरी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी और वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। हिलरी अमरीकी कानूनों की मानी हुई जानकार हैं और बहुत पक्के तौर पर कहा जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के यौन शोषण मामले में जब वो फंस गए थे, तो उन्हें महाभियोग से बचाने में हिलरी क्लिंटन ने पत्नी के अलावा कानूनी रूप से भी बहुत मदद की थी। बहरहाल अब उन्हें चुनाव मैदान में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का सामना करना है, जहां उनकी राह बहुत आसान नहीं रहने वाली है। हिलेरी की सबसे बड़ी चुनौती, या कहें कि सबसे पहली चुनौती, तो ये है कि उन्हें अपनी पार्टी को एकजुट करना है, क्योंकि पार्टी में उनके प्रतिद्वंदी रहे बर्नी सैंडर्स के समर्थक अब भी उन्हें पूरे मन से अपना नहीं पाए हैं। फिलाडेल्फिया में जहां डेमोक्रेटिक पार्टी का सम्मेलन हो रहा है, वहां बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय भी मौजूद हैं। आइए सीधे उन्हीं से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। ब्रजेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जैसा कि कल भी हम लोगों ने सुना वहां के संवाददाताओं से और वहां जो टीवी पर जो तस्वीरें दिखी, कि पार्टी के अंदर हिलेरी क्लिंटन को लेकर के एकजुटता पूरी तरह से नहीं दिख रही है, बर्नी सैंडर्स के समर्थक उन्हें नहीं अपना रहे हैं, अब पिछले 24 घंटे में क्या बदलाव आया है?
देखिये निखिल, आज दिन में मुझे कई बर्नी सैंडर्स समर्थक मिले जो अभी भी पूरी तरह से हिलेरी के खिलाफ हैं। उनमें से एक का कहना था कि अभी तो हमने क्रांति की शुरुआत ही की है, हम कैसे उनके साथ हो जाएं जिनके खिलाफ हमने बिगुल बजाया है। एक गाड़ी पर मुझे चौक से लिखा हुआ इश्तेहार नजर आया जिस पर लिखा हुआ था प्रिजन फॉर हिलेरी, यानी हिलेरी के लिए जेल, और साथ ही एक स्टिकर लगा हुआ था मॉम्स फॉर सैंडर्स, यानी अमरीकी माएं जो बर्नी सैंडर्स के साथ हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी एक तरह से एक कट्टर सोच अभी भी मौजूद है पार्टी के अंदर। लेकिन वहीं सैंडर्स की तरफ से कोशिश हुई है कि पार्टी एकजुट हो जाए, या फिर कम से कम उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि वो पार्टी को एकजुट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जब आज जब हिलेरी क्लिंटन को औपचारिक रूप से उम्मीदवारी देने के लिए वोटिंग हो रही थी, तो उन्होंने खुद रोल कॉल जो होता है यहाँ पर उसको रोक कर एक तरह से हिलेरी की उम्मीदवारी का ऐलान किया। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
I move that the convention suspend the procedural rules. I move that all votes cast by delegates be reflected in the official record. And I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for President of the United States.
तो बर्नी सैंडर्स से आप सुन रहे थे कि कैसे उन्होंने कहा कि जो तकनीकी प्रक्रिया है उसको अब हम निलंबित करें, सस्पेंड करके हिलेरी क्लिंटन को उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। और ये वो बर्नी सैंडर्स हैं जो उनके निकटतम और कह सकते हैं आप कट्टर प्रतिद्वंदी थे प्राइमरी चुनावों के दौरान। वैसे एक चीज और याद दिलाने वाली बात है कि हिलेरी ने भी 2008 में जब वो ओबामा के खिलाफ खड़ी थी और प्राइमरी चुनाव में, तो उन्होंने भी यही किया था कि रोल कॉल को बीच में ही रोककर उन्होंने कहा था कि वो खुद उनकी उम्मीदवारी का ऐलान करती है। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले सैंडर्स के कुछ बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने यहाँ के मीडिया सेंटर के बाहर हिलेरी के खिलाफ नारेबाजी की है। वैसे हाल ही में आए सर्वेक्षणों के मुताबिक सैंडर्स के 90% समर्थक ट्रंप के खिलाफ हिलेरी का साथ देने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तबका अभी भी है जिसका कहना है कि बर्नी और बस्ट, यानी बर्नी नहीं तो कोई नहीं।
ब्रजेश, ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी, क्षमा कीजिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी की बात हुई, लेकिन फिर भी हिलेरी क्लिंटन ने एक इतिहास रच दिया है। वो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में महिला, ऐसी पहली महिला बन गई हैं जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी एक प्रमुख पार्टी से हासिल करने में कामयाब हुई हैं। आखिर इतना समय क्यों लगा अमेरिका में किसी महिला को इस पद तक पहुंचने के लिए?
देखें, ये सही मायने में आप देखें तो एक बहुत अहम ऐतिहासिक घड़ी है अमेरिका के लिए। हम और आप शायद निखिल इसका अंदाजा, इसकी अहमियत का अंदाजा न लगा पाए, क्योंकि हमने तीसरी दुनिया कहे जाने वाले दक्षिण एशिया में इंदिरा गांधी को देखा है, बेनजीर भुट्टो को देखा है, दुनिया की सबसे पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष यानी श्री माओ बंदारा नायके को देखा है, शेख हसीना को देखा है, खालिदा जिया को देखा है। लेकिन ये मुल्क वो मुल्क है जहां 1920 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार तक नहीं था। अभी भी महिलाओं को पुरुषों से कई क्षेत्रों में कम पगार, उसी काम के लिए कम पगार मिलता है। तो ये काफी अहम पड़ाव है अमरीकी इतिहास का, और एक बहुत बड़ी, जिसे हम ग्लास सीलिंग कहते हैं, वो टूटा है अमेरिका में। और इसलिए आप कह सकते हैं कि एक तरह से देर आए दुरुस्त आए वाली हालत है। लेकिन हाँ, और बहुत लोग सवाल उठाते रहे कि पूरी दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाला अमेरिका, पूरी दुनिया भर में लोकतंत्र की पैरवी करने वाले अमेरिका में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति क्यों नहीं बन पाई है, लेकिन देखें कहीं इस नवंबर में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी।
जी ब्रजेश, पिछली बार जो चुनाव हुआ था बराक ओबामा को राष्ट्रपति बना करके डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक और इतिहास रचा था, इस बार क्या किस बात की कितनी उम्मीद लग रही है? डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कितनी मजबूत है हिलेरी क्लिंटन की उम्मीदवारी इस वक्त?
देखिये मुकाबला काफी कड़ा है फिलहाल, आप कह सकते हैं हिलेरी क्लिंटन का जो ईमेल का विवाद रहा है या फिर उनके लिए जो एक तरह की विश्वास की कमी नजर आती है अमेरिकी मतदाताओं में, वो बातें ट्रंप के हक में जा रही हैं। लेकिन कागज पर देखें, गणित को देखें, तो वो आगे नजर आती हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अपने भारत में देखा है, जब चुनावी हवा चलती है तो फिर सारे समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं, और कई इलाकों में ट्रंप के लिए मुझे वो हवा नजर आई, खासतौर पर रिपब्लिकन कन्वेंशन के दौरान जब मैं उन इलाकों का दौरा कर रहा था। हिलेरी क्लिंटन की चुनौती है अपने समर्थकों में जोश जगाकर उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की। वहां उन्हें बर्नी सैंडर्स की जरूरत होगी, क्योंकि आपको याद होगा प्राइमरी चुनाव के दौरान या अभी भी बर्नी सैंडर्स के जो समर्थकों में जो जोश नजर आता है वो हिलेरी की रैलियों में नहीं नजर आया है। पार्टी के सभी बड़े जो दिग्गज आप कह सकते हैं उनके साथ हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के लिए लगातार तीसरी बार जीत हासिल करना, क्योंकि जैसा दो बार से डेमोक्रेट्स जीत रहे हैं 2008 में फिर 2012 में, तो ये आसान नहीं रहा है अमेरिका में, और उसके लिए हिलेरी क्लिंटन को जरूरत होगी कि वो अपने समर्थकों को अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक खींच सके, और उसके लिए सबसे अहम चीज है कि जोश जगाना, और वो देखता है कि वो किस हद तक कर पाती है।
बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय फिलाडेल्फिया से इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां सिंध प्रांत का घोटकी ज़िला मस्जिद में कुरान जलाने की घटना के बाद से तनाव में घिरा है। खबर है कि एक अज्ञात शख्स ने कुरान जला दिया। पुलिस ने कुरान जलाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग सहमे हुए हैं और अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। शहर पूरी तरह से बंद है और सन्नाटा फैला है। अमरेश द्विवेदी से सुनिए पूरा हाल।
सिंध प्रांत में घोटकी जिले के डेढ़की कस्बे के 2500 से ज्यादा हिंदू परिवार पिछले दो दिन से सहमे हुए हैं और अपने अपने घरों में दुबके हैं। स्थानीय मस्जिद में कुरान जलाए जाने की घटना के बाद से इलाके में तनाव है। लोगों को आशंका है कि इस तनावपूर्ण माहौल का फायदा उठाकर सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जा सकता है, इसलिए किसी अनहोनी की आशंका से शहर भर में सन्नाटा पसरा है। डेढ़की में हिंदू पंचायत के प्रमुख डॉक्टर सेवक राम बताते हैं,
शहर पूरा बंद है। हमारी अपने लोगों के साथ हमदर्दी है और ये अगर जिसने भी किया है उसको सजा होनी चाहिए। हमारी सारी कम्युनिटी, मेरे शहर सारे शहर के लोग अपने भाइयों के साथ इस गम में शरीक है, और इंतजामिया भी हमारा पूरा साथ दे रही है।
इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। घोटकी जिले के DSP फिदा हुसैन ने BBC को घटना और उसके बाद हुई कार्रवाई की जानकारी दी।
रात को मस्जिद में कुरान पाक शहीद हुए, डेर की इलाका को मस्जिद कहते हैं, बुदड़ी मस्जिद है ये, एक अमर लाल नाम का बंदा है जिसको पकड़ा हुआ है, उसका पर्चा भी दाखिल हो गया FIR के। ये जो मुसलमान लोग हैं उसमें कुछ शरारती लोग भी हैं, कुछ मौलवी हैं, उन्होंने आकर डेर की में रोड ब्लॉक किया। यही है कि उसको इधर इधर सजा दो, भाई सजा दो, उसको पर्चा हो गया है, कानून सजा देगा।
हालांकि इलाके के सामुदायिक और धार्मिक ताने बाने को जानने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार का कहना है कि मस्जिद में कुरान जलाए जाने की घटना प्रायोजित भी हो सकती है। उन्होंने एक स्थानीय नागरिक के हवाले से BBC को बताया कि दरअसल ये डेढ़की के हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाकर उनकी जमीन हथियाने की कोशिश का मामला भी हो सकता है।
असल में ये कोई गैर की और गैर की के दरमियान जो है कोई 100 एकड़ जमीन है हिंदुओं की, तो मैंने मुझे ये पता है कि अभी मैंने फोन आपके फोन से पहले मैंने पूछा था असल कहानी क्या है इसके पीछे, तो उन्होंने बोला उस 100 एकड़ की जमीन का इशू है जो भरचुंडी वाले बहुत कम दाम में हिंदुओं से खरीदना चाहते हैं, इसलिए ये ड्रामा रचाया गया है।
राजकुमार का कहना है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी सिंध में बसती है और ये लोग मुसलमानों के साथ सालों से मिलकर रहते आए हैं।
सिंध में ऐसा इशू नहीं है, हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहते हैं। आप ने अगर देखा होगा कि होली में हमारे साथ मुसलमान दोस्त साथ होते हैं या हम उनके साथ ईदों पे होते हैं, ये तो इतना इशू नहीं, लेकिन जो चंद शहर के सिंध लोग हैं वो ये चाहते हैं।
इससे पहले साल 2012 में घोटकी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तब तनाव पैदा हो गया था जब रिंकल कुमारी नाम की 19 साल की एक हिंदू लड़की को अगवा कर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था और फिर उसकी शादी एक मुसलमान युवक से करा दी गई थी।
सिंध प्रांत के घोटकी जिला में तनाव, रिपोर्ट सुना रहे थे अमरेश द्विवेदी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। गुजरात में दलितों के पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद जो वहां विरोध प्रदर्शन हुए हैं उस पर स्थानीय मुसलमानों की भी नजर है। राज्य में मांस को लेकर आम तौर पर जो लोगों की प्रवृत्ति है वो कभी कभी बहुत अजीब सा रूप ले लेती है। गुजरात में मांसाहारी लोगों को जल्दी किराए पर मकान भी नहीं मिलता। ये सब तो वहां था ही, लेकिन इसके साथ आजकल गौ रक्षकों की अति सक्रियता ने मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। विनीत खरे की रिपोर्ट सुनिए।
शब्बीर हुसैन कुरैशी पिछले कई सालों से मीट के धंधे में हैं और अहमदाबाद के मिर्जापुर स्थित मीट मार्केट में उनकी दुकान है। उनके मुताबिक मई में दो पुलिस वाले उनकी दुकान में आए और आरोप लगाया कि उनकी दुकान में गोमांस है। उन्होंने करीब 125 किलोमीटर गाड़ी में रखवाया और पुलिस दफ्तर ले गए। शब्बीर का आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी बहुत पिटाई की जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। शब्बीर बताते हैं कि प्रशासन ने मीट की जांच करवाई और पाया कि मीट भैंस का है।
जो रिपोर्ट आया तो मैंने किया, मैंने रिपोर्ट तो भैंस का आई है। उसके बाद मैंने साहब मटन तो मतलब इसका नाश ना करो, मैंने नुकसान हो जाएगा मेरे को। बोले नहीं ये तो सब फेंकना पड़ेगा। बोले उन्होंने सब मांस भी नाश करा दिया।
पूरा 125 किलो जो था पूरा फेंक दिया। कितने का था करीब वो, कितने का
वो
नुकसान हुआ? करीब
15,000 के आसपास का।
इस बारे में हमने पुलिस प्रवक्ता से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। मामला भी अदालत में है। ग्रेटर नोएडा में अखलाक हत्याकांड के अलावा ऐसे कई वाकये हुए हैं जिनमें खुद को गोरक्षा कार्यकर्ता बताने वालों ने गोमांस ले जाने के आरोप में लोगों की पिटाई की। शब्बीर बताते हैं कि उनके जैसे कई दुकानदार हैं जो मीट मार्केट में बिजनेस करते हैं और वो डरे हुए हैं कि कोई दुकान में गोमांस होने का आरोप लगाकर घुस न जाए। कोई दुश्मनी निकालने के लिए भी ऐसे आरोप लगा सकता है। याद रहे गुजरात में गोहत्या पर पाबंदी है। इन कारणों से गुजरात के मुसलमान गाय की चमड़ी ले जाने के आरोप में तीन दलित युवकों और एक लड़के की गोरक्षा समितियों से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई के वीडियो पर दलितों के प्रदर्शन को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। स्थानीय मुस्लिम कार्यकर्ता दानिश कुरैशी कहते हैं कि मीट के मुद्दे पर प्रशासन की कार्रवाई को देखकर लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर प्रशासन भारी ऊर्जा खर्च कर रहा है जिसे दूसरे कामों में लगाया जा सकता था।
मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली में ये जो संघ की जो राजनीति है, मतलब यानी उत्तर भारत के ब्राह्मणों का जो ब्राह्मणिज्म है वो पूरे मुल्क में फैलाया जाए, ऐसा मेरा सोचना है पूरे मुल्क में फैलाया जाए। क्योंकि ब्राह्मण अगर साउथ में आप चले जाए तो वहाँ ब्राह्मण बिजनेस करते हैं, बकायदा मैंने ब्राह्मणों के होटल में नॉनवेज खाया हुआ है।
दानिश का आरोप है कि पूरे गुजरात में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप मांसाहारी हैं तो आपका स्वागत नहीं है।
मांसाहार को इस तरीके से मतलब वो किया जा रहा है कि मतलब आप अगर मांसाहारी हैं तो आपको ये कहने में भी मतलब शर्म महसूस हो, ऐसा एटमोस्फियर इस तरीके का बना दिया गया है।
गुजरात में जैनियों और स्वामी नारायण समुदाय का बहुत असर है जिसके कारण अगर आप मांसाहारी हैं तो आपके लिए मकान किराए पर लेना भी आसान नहीं। दानिश और कुछ स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार भी लगाई है कि गौरक्षा मंडलियों पर रोक लगे, उनकी फंडिंग पर रोक लगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको मिल रहे सपोर्ट पर भी रोक लगनी चाहिए। दानिश कहते हैं कि वर्ष 2002 के दंगों में दलितों और मुसलमानों में आई दूरियों के बावजूद वो इस मुद्दे पर दलितों के साथ हैं। पुलिस में इन गौरक्षकों को लेकर क्या सोच है? गांधीनगर स्थित पुलिस मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात में मैंने यही सवाल रखा। जवाब मिला, जाने दीजिए ना इन सब बातों को। अहमदाबाद में एक अन्य पुलिस अफसर से मैंने यही पूछा, क्या उन पर कोई दबाव है, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? जवाब मिला, हम किसी के मात्र गोरक्षक होने पर कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो व्यक्ति कानून तोड़ता है तभी उस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। एक अन्य पुलिस अफसर ने बताया कि पुलिस के पास गोमांस की शिकायत लेकर लोग फोन करते हैं और पुलिस को इन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करनी होती है, नहीं तो स्थिति बिगड़ने का खतरा रहता है। लेकिन ये गोरक्षक तो खुलकर मीडिया को इंटरव्यू में कहते हैं कि वो पुलिस के साथ काम करते हैं। स्थानीय पुलिस अफसर इन खबरों को गलत बताते हैं। मीडिया रिपोर्टों की माने तो कई गोरक्षक मिडिल क्लास परिवारों से होते हैं और आपस में व्हाट्सएप आदि की मदद से जानकारियां बांटते हैं। क्या इन गोरक्षकों का आरएसएस या आरएसएस से जुड़े संगठनों से संबंध है जैसा कि आरोप लगते हैं? गुजरात आरएसएस प्रवक्ता विजय भाई कहते हैं कि उनका संगठन दलितों की पिटाई की निंदा कर चुका है और उनकी टीम पहले ही इलाके का दौरा कर चुकी है।
गौरक्षा एक सैद्धांतिक बात है, उसे समर्थन करते हैं। संघ के लोग जाके ऐसा करते तो होता नहीं, कहीं भी नहीं होता।
संघ के लोग और संघ इंस्पायर्ड लोग भी हो सकते हैं ना सर?
नहीं,
आइडियोलॉजी
इंस्पायर्ड नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब भी बात करते हैं तब कायदे के दायरे में रह के बात करते हैं।
उधर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजीव शाह कहते हैं कि इस मुद्दे के उठने से स्थानीय मुसलमान खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे पूरी बात सामने आएगी और उनकी चिंताओं पर प्रशासन और मीडिया का ध्यान जाएगा। विनीत खरे, बीबीसी अहमदाबाद।
और आगे बढ़ने से पहले आइए जरा अखबारों पर नजर डालते हैं कि आज दिल्ली के अखबारों में क्या कुछ छपा है। संदीप सोनी आ चुके हैं अखबार लेकर के। संदीप बताइए क्या है।
निखिल, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर खबर दी है कि गुजरात में कथित गौ हत्या को लेकर जो हंगामा हुआ, दलितों को पीटा गया, वो मामला दरअसल कुछ और ही था। गौरक्षक जिसे गौवत का मामला बता रहे थे, उस गाय को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक शेर ने मारा था। गुजरात सीआईडी की क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये बात कही है। इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर पहले पन्ने पर है। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन अगले महीने यानी अगस्त से मिलने लगेगा, लेकिन अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करोगे तभी मिलेगा इंक्रीमेंट और प्रमोशन। अमर उजाला ने यह खबर अपने पहले पन्ने पर सबसे ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में छापी है। खबर में लिखा है कि पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए जो मानदंड होता है उसे अच्छे से बढ़ाकर बहुत अच्छा कर दिया गया है। अगली खबर खेल जगत से। प्रवीण राणा को मौका मिला है रियो ओलंपिक में अपना दमखम दिखाने का। नरसिंह यादव जो डोप टेस्ट में फेल हो गए थे, उनकी जगह अब प्रवीण राणा 74 किलोग्राम भार वर्ग में रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दैनिक जागरण की यह पहली खबर है। खबर में यह भी कहा गया है कि डोप टेस्ट में फंसे नरसिंह यादव को खाने में कुछ मिलावट की गई थी, जिसमें जिसने ये कथित मिलावट की थी, गड़बड़ी की थी, उसकी पहचान हो गई है और इस मामले से जुड़े सबूत जो हैं वो अब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा के सामने पेश किए जाएंगे। रुख करें अंग्रेजी के अखबारों का तो मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने 16 साल से जारी अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। द हिंदू की पहली खबर है, अन्य अखबारों में भी है। वहीं टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी विधेयक पारित होने की उम्मीद दोबारा जगी है, ये खबर पहले पन्ने पर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर कहती है कि जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच समझौता हो गया है और राज्यसभा में आने वाले दिनों में अगले हफ्ते जीएसटी विधेयक पारित हो सकता है।
बहुत शुक्रिया संदीप इस अखबारों की पूरी समीक्षा के लिए। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। कश्मीर सालों से अशांत है, अक्सर हिंसा की आवाज़ सुनाई देती रहती है। ऐसे में कोई अगर शांति की बात करे तो वो नक्कार खाने में तूती जैसी ही मालूम पड़ती है। लेकिन ज़रा सोचिए, जिस शख्स ने कभी बंदूक उठाई हो और वो शांति का पैगाम दे तो क्या उसे लोग सुनेंगे? हमारे साथी जुबैर अहमद श्रीनगर में ऐसे दो भाइयों से मिले जो कभी चरमपंथी थे और अपने एक भाई को इस रास्ते में हलाक होते देखा है। लेकिन अब उनके दिल बदल गए हैं और वो अमन के लिए काम कर रहे हैं। जुबैर अहमद से सुनिए उनकी कहानी।
एक ही परिवार में तीन चरमपंथ, एक की मौत हो चुकी है, दो जेल की सजा काट के अब शांति से इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये है श्रीनगर का खान परिवार। सैफुल्ला खान और उनके छोटे भाई सिद्दीक खान अपने भाई उमर की याद में अब शांति का पैगाम देते हैं। कश्मीर में हाल में हुई हिंसा में मारे जाने वाले युवाओं पर उन्हें भी काफी अफसोस हुआ है, जैसा कि सैफुल्ला बताते हैं।
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिलिटेंट में और एक आम शहरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप एक मिलिटेंट को गोली मारते हैं तो क्या आप एक आम शहरी को भी गोली मारेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अमन की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने बंदूक का रास्ता अपनाया था, बंदूक उठाई भी थी, चढ़ाई भी है, जेल भी गया हूँ और उसके बाद पीस प्रोसेस भी चालू हुआ, तो मैंने सोचा चलो पीस के ऊपर काम करेंगे और मसले कश्मीर का एक हल होगा टेबल के ऊपर अमन के साथ, जिसमें कोई हमारा बच्चा ना मरे, हमारा कोई बच्चा नाबीना ना हो।
वो कहते हैं कि उनकी कोशिशों का फल उन्हें नहीं मिल रहा है। सैफुल्ला के भाई सिद्दीक मायूस नजर आते हैं। वो सरकार को दोषी मानते हैं।
हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारी मेहनत का कोई फल हमें मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉज है। हमारी बात इन तक पहुंचती नहीं है और ना पहुंचने दिया जाता है। अगर हम कोई बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट हम पर बैन कर देती है।
लेकिन अब भी सैफुल्ला की कश्मीरी युवाओं को सलाह है कि भाई पत्थर मत मारो सुरक्षा कर्मियों पर।
फिर मैं उनसे एक दफा ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मत मारो पत्थर। तुम पत्थर मारते हो, ये तुम्हें गोली मारते हैं। इनको मोहब्बत से, प्यार से निकालो।
छोटे भाई सिद्दीक मायूस तो हैं, लेकिन शांति के रास्ते से पीछे हटने का नाम नहीं लेते।
देखिए, मैं उस रास्ते पे तो नहीं जाना चाहता, लेकिन इस पीस के लिए काम मैं करता रहूंगा जब तक कि मैं जिंदा हूँ, जब तक ये जम्मू कश्मीर का फैसला न हो जाए।
अमन फैलाने की इन दोनों भाइयों की मुहिम जारी है, लेकिन रास्ता मुश्किल है। जुबैर अहमद, BBC, श्रीनगर।
इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच बहने वाली महानदी पर बनने वाले बांधों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ अपने इलाके में इस नदी पर कई छोटे छोटे बांध बना रहा है, जिसे लेकर उड़ीसा सरकार का कहना है कि अगर इस तरह से महानदी पर बांध बनाए गए तो उड़ीसा की ओर बहने वाली इस नदी पर संकट गहरा जाएगा। महानदी के पानी पर छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गरमाई हुई है। पूरा हाल सुनिए आलोक पुतुल से।
महानदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है और राज्य की तमाम नदियों में अकेले महानदी का हिस्सा 55% से अधिक इलाके में फैला हुआ है। लेकिन ओडिशा की ओर बहने वाली इस नदी के पानी का उपयोग छत्तीसगढ़ से कहीं अधिक ओडिशा में होता रहा है। ओडिशा के हीराकुद बांध के जलग्रहण क्षेत्र का 86% हिस्सा छत्तीसगढ़ के महानदी से भरता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी पर बैराज और डैम बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसे लेकर ओडिशा में पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब पानी को लेकर शुरू हुआ विवाद छत्तीसगढ़ में भी गरमाने लगा है। राज्य भर में महानदी के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सुर अलग अलग हैं। वहीं हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी ताल ठोंक कर मैदान में हैं।
पांच बराज बनाने का फैसला किया गया, कोई बहुत बड़ा बांध नहीं बन रहा है, उस पर इतनी बड़ी आपत्ति है कांग्रेस को, राष्ट्रीय पार्टी को। वो पूरी तरह से उड़ीसा का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और हम चुनौती देते हैं कि ये बराज बनेंगे।
लेकिन इन आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी जोगी पर पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि महानदी पर केवल राजनीति हो रही है।
ऐसा कोई मांग जयराम रमेश ने नहीं किया है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ की और सनसनी फैलाने की राजनीति कर रहे हैं लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ के हितों के साथ खिलवाड़ होता रहा, उस समय ये लोग कहां सोए हुए थे?
ओडिशा सरकार, कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के आपसी विवादों के बीच राज्य के सिंचाई मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ में महानदी पर डैम बनकर रहेगा। अग्रवाल का कहना है कि बरसात के दिनों में महानदी में जितना पानी बहता है उससे हर साल हीराकूद बांध को कम से कम 3 बार भरा जा सकता है।
कोई भी नया काम हम नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे काम चल रहे हैं पिछले 5-7 सालों से चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे उड़ीसा की जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जो फ्लो वाटर है जो बरसात के दिनों में बहकर समुद्र में चला जाता है, सिर्फ उस पानी का हम उपयोग कर रहे हैं। हीराकुंड डैम को या उड़ीसा की जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।
फिलहाल महानदी के मुद्दे पर केंद्रीय जल संसाधन विकास मंत्रालय ने 29 जुलाई को ओडिशा छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाई है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन तब तक छत्तीसगढ़ की राजनीति में महानदी के पानी और पानी की धार पर बहस का सिलसिला जारी रहेगा। आलोक पुतुल, BBC, छत्तीसगढ़।
आलोक पुतुल की इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त पूरा हो चला है नमस्कार भारत का, तो आइए सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। हिलेरी क्लिंटन अमेरिका में किसी प्रमुख राजनीतिक दल की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं। फ्रांस में एक चर्च में पादरी की हत्या और हत्या करने वाले व्यक्ति का कथित इस्लामिक स्टेट से संबंध होने की खबरों के बाद राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि यूरोप ने इससे पहले कभी इस तरह के खतरे का सामना नहीं किया। अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के मुनाफे में 27% की गिरावट आई है। कंपनी ने बताया है कि इस वर्ष की दूसरी तिमाही में आईफोन की बिक्री कम हुई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने जर्मनी की कार बनाने वाली कंपनी फॉक्स वैगन के उत्सर्जन संबंधी घोटाले को $15 अरब में कानूनी तरीके से निपटाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे संदीप सोनी और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद। निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।